कल हम श्लोक 38 तक पाठ किया था। मैं 37 से पाठ करना शुरू कर रहा हूं आज। प्रभु कहे यही देहो तोमा सबाकार, जेई तुमि कहो सेई सम्मत आमार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये मेरा शरीर आप सबका है, अतएव आप लोग जो भी कहेंगे वो मुझे स्वीकार है। तबे सार्वभौम प्रभुर दक्षिण पार्श्वे बसी, मिलाइते लागिला सब पुरुषोत्तम वासी। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के दाहिने बैठकर पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी के सारे निवासियों का परिचय कराने लगे। यही सब लोक प्रभु बैसे नीला चले, उत्कंठित हइयाछे सबे तोमा मिलिबारे। भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, ये नीलाचल के सारे निवासी आपसे मिलने के लिए परम उत्सुक रहे हैं। त्रिषितो चातक जोइछे करे हाहाकार, तोइछे सब सबे करे अंगीकार। आपके अनुपस्थिति में ये सारे लोग प्यासे पपीहो की तरह निराश होकर चिल्ला रहे थे, कृपया इन्हें अपने शरण में ले। जगन्नाथ सेवक ओई एई नाम जनार्दन, अनवसरे करे प्रभुर श्रीअंग सेवन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सर्वप्रथम जनार्दन का परिचय देते हुए कहा, ये भगवान जगन्नाथ का सेवक जनार्दन है। ये भगवान की तब सेवा करता है जब उनके दिव्य शरीर का श्रृंगार किया जाता है। कृष्णदास नाम ए सुवर्ण बेत्रधारी, शिखी महती नाम ए लिखनाधिकारी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बतलाया, ये कृष्णदास हैं जो सोने का दंड लिए रहता है, और ये हैं शिखी महती जो लेखन अधिकारी हैं। प्रद्युम्न मिश्र इहा वैष्णव प्रधान, जगन्नाथेर महाश्वार इह दास नाम। ये प्रद्युम्न मिश्र हैं जो सारे वैष्णव का मुखिया हैं। ये जगन्नाथ जी का महान सेवक हैं और इसका नाम दास है। मुरारी महाती हो शिखी महातीर भाई, तुमार चरण बिनु आर गति नाई। ये शिखी महती का भाई मुरारी महती है, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त इसका कोई अन्य आश्रय नहीं है। चंदनेश्वर सिंहेश्वर मुरारी ब्राह्मण, विष्णुदास इह ध्याये तुमार चरण। ये चंदनेश्वर सिंहेश्वर मुरारी ब्राह्मण तथा विष्णुदास है, ये सभी आपके चरण कमलों का ध्यान करने में लगे रहते हैं। प्रहर राज महापात्र इह महामती, परमानंद महापात्र इहार संहति। ये परमानंद प्रहर राज हैं जो महापात्र नाम से भी जाने जाते हैं, ये अत्यधिक बुद्धिमान हैं। एसव वैष्णव एई क्षेत्रेर भूषण, एकांत भावे चिंते सबे तोमार चरण। ये सारे शुद्ध भक्त जगन्नाथ पुरी के आभूषण के तुल्य सेवा करते हैं, ये सभी आपके चरण कमलों का एकांत भाव से ध्यान करते हैं, ध्यान धरते हैं। तबे सबे भूमे पड़े दंडवत हइया, सबा आलिंगिला प्रभु प्रसाद करिया। इस परिचय के बाद सारे लोग जमीन पर डंडे की तरह गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक पर कृपा करके उन सबों का आलिंगन किया। हेनकाले आईलो तथा भवानंद राय, चारिपुत्र संगे पड़े महाप्रभुर पाए। तभी भवानंद राय अपने चार पुत्रों के साथ आए और वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। सार्वभौम कहे ए राय भवानंद, इहार प्रथम पुत्र राय रामानंद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बतलाया ये भवानंद राय हैं जिनके प्रथम पुत्र रामानंद राय हैं। तबे महाप्रभु तारे कोई लो आलिंगन स्तुति करी कहे रामानंद विवरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय का आलिंगन किया और बड़े ही आदर के साथ उनके पुत्र रामानंद राय का बखान किया। रामानंद हैनो रत्न जाहार तनय ताहार महिमा लोके कहन न जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय के ये कहकर सम्मान किया जिस व्यक्ति के रामानंद राय जैसा पुत्र रत्न हो उसकी महिमा का वर्णन इस मर्तलोक में नहीं किया जा सकता। साक्षात पांडु तुमे तुमार पुत्री कुंती पंच पांडव तुमार पंच पुत्र महामती। आप साक्षात पांडु हैं और आपकी पत्नी साक्षात कुंती हैं। आपके सारे के सारे पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं जो पांचों पांडव का प्रतिनिधित्व करते हैं। राय कहे आमी शूद्र विषयी अधम तबु तुमे स्पर्श ए ईश्वर लक्षण। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई प्रशंसा सुनकर भवानंद राय ने निवेदन किया मैं चातुर्वर्ण में चौथा हूँ शूद्र हूँ और सांसारिक कार्य में लगा रहने वाले प्राणी हूँ। मैं पतित हूँ फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया ये इसका प्रमाण है कि आप भगवान हैं। निज गृह वित्त भूत भृत्त पंच पुत्र शने आत्मा समर पिलु आमी तोमार चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की प्रशंसा करते हुए भवानंद राय ने ये भी कहा मैं अपने घर धन नौकरों तथा पांचों पुत्र समेत आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। एई बाणीनाथ रहिबे तोमार चरणे जबे जेई आज्ञा ताहा करिबे सेवने। ये बाणीनाथ नामक मेरा पुत्र आपके चरण कमलों में आपके आदेशों का पालन करेगा और आपकी सेवा करता रहेगा। आत्मीय ज्ञाने मोरे संकोच ना करिबे जेई जबे इच्छा तबे सेई आज्ञा दिबे। हे प्रभु आप मुझे अपना संबंधी समझो आप जब भी जो चाहे उसके लिए आदेश देने में तनिक भी संकोच नहीं करे। प्रभु कहे कि संकोच तुमी न हो पर जन्मे जन्मे तुमी आमार सबंशी किंकर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय की बात ये कहते हुए मान ली मैं बिना संकोच के माने लेता हूँ क्योंकि आप पराये नहीं हैं। आप जन्म जन्मांतर अपने परिवार वालों समेत मेरे सेवक रहते आए हैं। दिन पांच सात भीतर आशिबे रामानंद तार संगे पूर्ण हबे आमार आनंद। पांच सात दिनों के ही भीतर श्री रामानंद आने वाले हैं। जो ही वे आ जाएंगे हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मुझे उनके संग अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। एतो बोली प्रभु तारे कोइल आलिंगन तार पुत्र सब शिरे धरिल चरण। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद का आलिंगन किया फिर उन्होंने उनके पुत्रों के सिरों पर अपने चरण कमल रखे। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण। और महाप्रभु का ये लीला क्या है, कौन सी है? महाप्रभु का ये लीला कृष्ण का वृंदावन लीला का ही दूसरी भाग है। शास्त्र में ऐसे वर्णन हुआ है कि वृंदावन है, वृंदावन गोलोक में दो प्रकष्ठ हैं, दो क्या दो चेंबर है। चेंबर को क्या बोलते हैं? प्रकष्ठ। प्रकोष्ठ हिंदी में भी आता है। दो प्रकष्ठ हैं एक है वृंदावन गोलोक का, एक प्रकोष्ठ है वृंदावन और दूसरा प्रकोष्ठ नवद्वीप। वृंदावन में श्री कृष्ण कृष्ण प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ भक्तों जो प्यार उनको दे रहे हैं उसको आस्वादन कर रहे हैं, भक्तों का प्रेम। ये प्रेम का प्रकाश कैसे होता है, कितने भाव से या कितने रसों में होता है, मुख्यतः तीन रसों में, उनमें से प्रधान है श्रृंगार, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। सख्य का मतलब सखाओं के बीच जो प्यार है, सखाओं के बीच प्यार होता है, अच्छा ये उसको सख्य रस कहा जाता है। और माता और पिता के साथ अपना संतान का जो संपर्क है वो भी एक प्रकार का प्रेम है, जिसे वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। वात्सल्य प्रेम, ये वात्सल्य शब्द भी हिंदी में आता है क्या? वात्सल्य आता है हिंदी में, वात्सल्य प्रेम। और पति पत्नी के बीच जो प्रेम है उसको श्रृंगार रस कहा जाता है, श्रृंगार या माधुर, मधुर रस। सख्य, वात्सल्य और मधुर। और इससे भी आगे मधुर रस जो है इसको भी दो प्रकार का है, इसका भी दो दो रूप, दो प्रकार का प्रकाश है। एक है पति पत्नी के जो संपर्क और दूसरा है प्रेमिक प्रेमिका के बीच जो संपर्क। पति पत्नी के बीच जो संपर्क है उसको स्वकिया कहा जाता है, स्वकिया प्रेम। और प्रेमिक प्रेमिका के बीच जो संपर्क है उसको परकिया कहा जाता है। तो ऐसे सारे जो प्रेम का जितने सारे संपर्क हैं उनमें से सबसे गहरा है परकिया प्रेम, प्रेमिक प्रेमिका के बीच जो प्यार का संपर्क होता है। तो वृंदावन में भगवान ये प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं, किनके साथ? ये प्रेम का आस्वादन भगवान किनके साथ करते हैं? अपने भक्तों के साथ। वृंदावन, ये ब्रजलीला का तात्पर्य यही है, भगवान प्रेम आस्वादन कर रहे हैं। और जो प्रेम भगवान वृंदावन में आस्वादन कर रहे हैं नवद्वीप में, अपना नवद्वीप लीला में वो प्रेम बांट रहे हैं। बांट रहे हैं मतलब क्या है? जो प्रेम भगवान वृंदावन में आस्वादन कर रहे हैं नवद्वीप में भगवान सबको वो प्रेम के संपर्क स्थापन करने में आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आओ भगवान के साथ प्यार के संपर्क जोड़ लो। भगवान स्वयं जाकर ऐसे प्रेम बांट रहे हैं। तो ये जो प्रेम जो भगवान बांट रहे हैं ये तो भगवान के रूप में तो भगवान प्रेम प्यार बांट नहीं सकेंगे, तो इसलिए नवद्वीप में भगवान भक्तों के रूप ग्रहण किए हैं। देखिए ये सारे बहुत ही गहरा तत्व हैं, इसको सही रूप से समझने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि, ऐसा नहीं सोचना कि ये कोई कहानियां हैं, कोई आकर ऐसे लिख दिया है, नहीं। हमारे जो शास्त्र हैं ये शास्त्र में सब वर्णन एकदम ध्रुव सत्य है, सत्य के अलावा शास्त्र में और कुछ नहीं है। सत्य का मतलब क्या होता है? अच्छा हम देखते हैं सत, सच और कहानी, इन दोनों में अंतर क्या है? सच जो है वो जो हो रहा है, जो हुआ है उसका वर्णन, और कहानी है किसी ने अपना मन की कल्पना के द्वारा कुछ घटना का और कुछ विषय का वर्णन करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोई कहानी सोचो, कोई गल्प नॉवेल क्या है, कोई बताओ, कोई अच्छा रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर ने लिखा था। रोमियो क्या असल में था कोई व्यक्ति? नहीं, सबको पता है रोमियो कोई नहीं था, जूलियट भी नहीं था। ये शेक्सपियर ने अपने कल्पना से लिखा है, अपने मन से वो कोई एक कैरेक्टर बनाया और उसको कहानी बना के सुनाया। वैसा शेक्सपियर के बहुत सारे ग्रंथ हैं, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर, ऐसे बहुत सारे शेक्सपियर के जो लिखा है वो कहानियां हैं। हिंदी में भी प्रेमचांद, प्रेमचांद मशहूर हैं, प्रेमचांद साहित्यिक हैं, वो मन की कल्पना से कुछ बना ये करके लिख देते हैं। बल्कि चैतन्य चरितामृत के ऐसा कोई किसी का मन की कल्पना का वर्णन है? महाभारत क्या किसी को मन की कल्पना का वर्णन है? रामायण क्या किसी मन का कल्पना का वर्णन है? श्रीमद् भागवतम क्या मन का कल्पना का वर्णन है? नहीं, ये सब जो घटना घटा था उसका वर्णन है। जैसे ये जब हम यहां पढ़ रहे हैं, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का लीला, मतलब चैतन्य महाप्रभु जब इस भौतिक जगत में थे उन्होंने जो कुछ किए हैं उसका वर्णन यहां हो रहा है। जैसे यहां अभी हम क्या वर्णन सुना है? महाप्रभु दक्षिण भारत से जगन्नाथ पुरी वापस आए, भ्रमण करने के पश्चात जगन्नाथ पुरी वापस आए। वापस आने के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके लिए एक जगह तैयार किया, उनका रहने के लिए एक बंदोबस्त किए। और वो बंदोबस्त कौन किया था? वहां के राजा ने किया था, उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र क्या कोई व्यक्ति था या कल्पना है? नहीं, प्रताप रुद्र उड़ीसा का राजा था। 500 साल पहले उस समय का उड़ीसा का राजा थे महाराज प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर बोला कि मैं सुना आपका घर में एक महापुरुष आकर ठहरे थे, तो उसके बारे में उनको मैं मिलना चाहता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया कि वो तो अब दक्षिण भारत में चले गए हैं भ्रमण करने के लिए। तो राजा ने पूछा आप क्यों उनको जाने दिया? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान को तो कोई उनका जो इच्छा है उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, उनको कोई निर्देश दे नहीं सकते हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक ही कार्य करते हैं। तब ऐसे बोला महाराज प्रताप रुद्र, तब बोला कि जब आएंगे वापस आएंगे कृपा करके हमको मिलाइएगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोला? मैं कोशिश करूंगा, बल्कि ये बहुत कठोर सन्यासी हैं, ये तो राजा के साथ सपना में भी कोई मुलाकात नहीं करते हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो राजा बोला उनको जब आएंगे तो उनको रहने का और ये सारे अच्छा बंदोबस्त करना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ, ऐसा एक बंदोबस्त करना चाहिए जो जगन्नाथ मंदिर के नज़दीक भी होगा बल्कि निराला स्थान में होगा, मतलब निर्जन विरल स्थान में। क्या हिंदी में क्या बोलेगा? एकांत स्थान में, एक एकांत स्थान में उनको रहने का बंदोबस्त करना है। तब उन्होंने राजा ने राजपुरोहित जो थे राजगुरु थे काशी मिश्र, काशी मिश्र के स्थान पर उनको रहने का बंदोबस्त किया। तो महाप्रभु जब वापस आए जगन्नाथपुरी में तो महाराज तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको काशी मिश्र के घर ले गए और काशी मिश्र उनको उनके पास अपने घर अपने सब कुछ समर्पण कर दिया चैतन्य महाप्रभु। और तब चैतन्य महाप्रभु उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और इसके पश्चात श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को वहाँ उपस्थित सारे व्यक्तियों के साथ उनका परिचय करवाया। वो सारे बहुत बड़े महान भक्त थे, जगन्नाथ के सेवक थे, भगवान के महान भक्त थे। तो ये जो है ये कोई ये कहानी और हकीकत ये दोनों में अंतर ये है। कहानी जो है वो कल्पना है बल्कि ये जो घटना घटा उसका ही वर्णन हो रहा है। एक बात ये भी याद रखना है हम सबको, देखिए भारत में ऐसे कहानियां कभी कोई नहीं लिखते थे, पहले कोई भी कहानियां नहीं लिखते थे, सब या तो भगवान को भगवान का घटना का या भगवान का भक्त का घटना का वर्णन करते थे या महान व्यक्ति को जो कार्य कलाप उसको वर्णन करते थे, राजाओं का कार्य कलाप वर्णन करते थे। जैसे देखिए अच्छा यह अवंती का एक महान कवि थे कालिदास, कालिदास का रचना देखिए, कालिदास का रचना क्या है, कौन कौन, मेघदूत। मेघदूत का घटना कहां से लिया गया, महाभारत से लिया गया। रघुवंश, रघुवंश का मतलब राम, रघुवीर रामचंद्र का जो वंश है उस वंश का वर्णन हो रहा है। विक्रम उर्वशीय, विक्रमादित्य राजा थे उनका जो वर्णन, उनका कहानी का घटना का वर्णन कर रहे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, ये घटना भी महाभारत से लिया गया है। मन कल्पन, मन की कल्पना से कुछ रचना नहीं किया, ये हमारे भारत के विशेषता है। बल्कि अंग्रेजों ने जब भारत में आया तब ये कहानी का प्रचलन हुआ। अंग्रेजों के प्रभाव पड़ने के पहले भारत के जो रचनाकार थे, कवि थे, नाट्यकार थे, वो मन की कल्पना से कुछ नहीं लिखते थे। सही घटना के आधार पर उन्होंने रचना करते थे। और आजकल क्या हो रहा है, जो सही घटना है वो बन गया है मिथोलॉजी। मिथोलॉजी का हिंदी क्या है पारुल, मिथोलॉजी, मिथोलॉजी का पौराणिक तो ठीक है, पुराण का कहानी मिथ, मिथ मतलब, मिथ मतलब मिथ्या, ये सही है। मिथ मिथ का मतलब है जो सत्य नहीं है, मिथ्या, जो सत्य नहीं है वो मिथ्या है, यह है मिथ्यालॉजी। जो जो असत्य घटना वो बोलते हैं, जो पुराण का पुराणिक जो कहानी है, पुराणिक कहानी को वो मिथोलॉजी बना दिया। मतलब ये अंग्रेजों ने हमको सिखाया है, वो तो अंग्रेजों ने आकर तो हमारा गुरु बन गया था और उन्होंने हमको सब सिखाया। हम तो सब अनपढ़ थे, हम सब असभ्य थे और अंग्रेजों ने थे हमारे मालिक साहब, और उन्होंने आकर हमको सब सिखाया और हमको सभ्य बनाया। तो वो जो सभ्यता उसके कारण क्या हो गया, हमारे जो संस्कृति था, हमारा जो इतिहास था, हमारे जो जो गर्व के जो संपद था, उसको हम त्याग दिया। त्याग कर अंग्रेजों का नौकर बन के अंग्रेजों का महिमा कीर्तन करने लगा। इसके कारण आज भारत का ऐसा हाल हुआ है। तो इसको सुधारना चाहिए। इंग्रेजों ने सभ्य नहीं था, वो सारे असभ्य था। अब भी वहां हफ्ता में एक दिन वो लोग नहाते हैं, ये क्या सभ्यता का लक्षण है? उनको बाहर से ऐसा लगता है बहुत साफ सुथरा, बल्कि नहाते नहीं है, अपने आप को साफ नहीं करते। देखिए उनका सभ्यता कैसा है, कैसा था। फ्रांस में जो वहां के जो लुई था, राजा था, उनका एक बहुत विशाल प्रासाद है। उस प्रासाद में शायद हाउ मेनी रूम्स मस्ट बी देयर इन दैट वर्से, नो नो मोर देन दैट, 300-400 rooms, 300-400। विशाल प्रासाद है राजा का, था, अभी भी है, बल्कि वहां एक भी शौचालय नहीं है। तो देखिए ये क्या सभ्यता का लक्षण है। वो इतना गंदा है इसलिए फ्रांस का परफ्यूम इतना अच्छा होता है। वो बदबू ढाकने के लिए वो फ्रांस फ्रेंच परफ्यूम्स। बल्कि भारत का ये कैसा है, बाहर से लगता है हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने वी आर नॉट सो ग्लैमरस, बल्कि अंदर से देखिए जो रास्ता में भी जो रहता है, रहने का जगह नहीं है, वो भी सुबह उठ के नहा। मैं कलकत्ता में देखता था वो वाटर हाइड्रेंट है, पानी जो निकलता है रास्ता साफ करने के लिए, वहां जाके वो नहाता है या तो नदी में नहाते हैं। और ये भारत का हाल अब खराब हो गया है, बल्कि भारत का जो संस्कृति है वो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, सबसे गंभीर है और सबसे महान है। ये हमको समझना चाहिए। तो इसलिए हमको ये शास्त्र पाठ करना चाहिए। ये पढ़ के हमें क्या पता चलता है, ये शास्त्र अध्ययन करने से हमें क्या पता चलता है, भगवान के बारे में हमें जानकारी होता है, भगवान के साथ हम संपर्क जोड़ सकते हैं, कैसे संपर्क जोड़ सकते हैं उसका निर्देश मिलता है, कैसे भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से हमें क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है, ये हमको जानकारी होता है। और अंत में हम अपना जीवन को सफल बनाकर इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के पास वापस जा सकते हैं। और विदेशियों का जो, अंग्रेजों का जो सभ्यता जो है वो क्या है, हमारा जो सभ्यता है वो आध्यात्मिक जगत जाने का सभ्यता है, और उनका जो सभ्यता है वो क्या है, भूत प्रेत बनने का सभ्यता है। देखिए हम मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर जलाया जाता है श्मशान में, और वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी में गोड़ देते हैं। तो गोड़ देने से क्या होता है, शरीर रह जाता है, तो सूक्ष्म शरीर ये शरीर के बंधन में रह जाता है, और इसलिए वो वहां के जितने सारे कबर खाना है सारे भूत भूत से भरा हुआ है। वहां भूत का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और हमारे यहां जो सभ्यता है, भूत प्रेत है यहां भी, बल्कि वो भूत प्रेत भी महादेव का शरण लेके रहता है, शिव जी का शरण में रहता है। तो शिव जी का शरण में रहने से उन लोगों का भी सदगति हो जाता है। तो ये हमारे जो आध्यात्मिक विचार हैं बहुत ही महान है, बहुत ही गंभीर है। तो मैं जो कह रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं कैसे हम, अर्थात नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण। नवद्वीप लीला में उन्होंने क्या कर रहे हैं, वृंदावन में कृष्ण जो प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं वो कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं, बांट रहे हैं मतलब ताकि उस प्रेम हमको भी मिल जाए, अर्थात हम भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन सके। वृंदावन में भगवान का भक्त लोगों ने जैसे भगवान को प्यार करते हैं, भगवान को सेवा करते हैं, वैसे हम भी उनके प्रति प्रेम प्राप्त होकर उनके सेवा कर सके। तो वृंदावन लीला में जो है कृष्ण का, नवद्वीप लीला में भी वो लोग हैं। तो देखिए कृष्ण लीला में पांडु का पांच पुत्र है, और नवद्वीप लीला में वो पांडु कौन है, भवानंद राय, और उनका भी पांच लड़का है। उनमें से सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़ा थे रामानंद राय। और कृष्ण लीला में रामानंद राय कौन थे, अर्जुन। तो कृष्ण लीला में जो अर्जुन, इस चैतन्य लीला में वो है रामानंद राय। তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল, বাণীনাথ পট্টনায়কে নিকট রাখিল। তব মহাপ্রভু নে ভবানন্দ রায় কো উনকে ঘর বাপস ভেজ দিয়া, আর আপনি সেবা মে কেবল বাণীনাথ পট্টনায়ক কো রাখ দিয়া, রাখ লিয়া। ভট্টাচার্য সব লোকে বিদায় করাইল, তবে প্রভু কালা কৃষ্ণ দাস বোলাইল। ফির সার্বভৌম নে सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को बुलाया, जो उनके साथ दक्षिण भारत की यात्रा में साथ साथ था। प्रभु कहे भट्टाचार्य सुनो ही आर चरित, दक्षिणे गिया छिलो इहो आमार सहित। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, जरा इस आदमी के चरित्र पर गौर कीजिए। ये मेरे साथ दक्षिण भारत का गया था, ये मेरा साथ दक्षिण भारत गया था। भट्टुथारी काछे गाला आमारे छाड़िया, भट्टुथारी वहीते हारे आनिलु उद्धारिया। इसने भट्टुथारियों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया था, लेकिन मैं उनकी संगति के बचाकर उसे लाया हूं। याद है सबको काला कृष्णदास का कहानी। काला कृष्णदास भट्टथारियों के पास चला गया। भट्टथारी एक संप्रदाय है जो ऐसे लगभग बंजारा जैसा होता है, नंबूदरी। दे ट्रैवल, दे वांडर राइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसे बंजारा जैसा है, और वो कोई लड़की को दिखाकर उसको भुलाकर ले गया। तो ये शिक्षा हो रहा है, यद्यपि महाप्रभु के साथ था फिर वो कोई ये माया इतना ही प्रबल है कि भगवान के साथ रहने रहते हुए भी वो भगवान को साथ छोड़कर कोई लड़की के पीछे भाग गया, बल्कि महाप्रभु उसको उसको उद्धार किया। इसका भी कारण क्या था? क्योंकि काला कृष्णदास नित्यानंद प्रभु का था, तो इसलिए भक्त महाप्रभु ने उसको उद्धार किया। एबे आमी इहानी कोडिलाम विदाय, जहा इच्छा जाहु आमा मोने नाही आर गाए। मैं इसे यहां लाया हूं, अतवैब मैं इसे विदा कर रहा हूं। अब ये जहां चाहे जा सकता है, क्योंकि मैं आगे इसका जिम्मेदार नहीं हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि उसका जिम्मेदारी उनका था, इसलिए उनको उद्धार किया। एतो सुनी कृष्णदास कादिते लागिलो, मध्यान्न करिते महाप्रभु चली गेलो। ये सुनकर महाप्रभु ने उसका तिरस्कार कर दिया। काला कृष्णदास जोर जोर से रोने लगा। ये कैसा लिखा है? चिल्लाने लगा। कांदीते लागिलो मतलब रोने लगा। रोना और चिल्लाना के एक है हिंदी में, क्राई मतलब रोना, रोने लगा। चिल्लाने लगा मतलब किंतु महाप्रभु ने उसकी तनिक भी परवाह ना की और वे अपना दोपहर को भोजन करने चले गए। नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर, चारिजने जुक्ति तबे कोडिलायंतर। इसके बाद नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर आदि अन्य भक्तों किसी जुक्ति पर विचार करने लगे। गौर देशे पाठाइते चाही एक जन, आई के कोही बे जाई प्रभुर आगमन। महाप्रभु के चारों भक्तों ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल जाकर सची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी आने की सूचना दे सके। अद्वैत शिवासादी जत भक्तगण, सबे आशिबे सुनी प्रभुर आगमन। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर अद्वैत तथा श्रीवास जैसे भक्तगण निश्चित रूप से आना चाहेंगे। एई कृष्ण दासे दिव गौर पाठाइया, एत कोहि तारे राखी लेन आश्वासिया। ये कहकर कि कृष्णदास को हम बंगाल क्यों ना भेज दे, इन सबों ने कृष्णदास को महाप्रभु के सेवा में लगा लिया और उसे ये भी ट्रांसलेशन है। Parul, can you read the English?
Letters therefore sent Krishnadas to Bengal. Saying this, they kept Krishnadas engaged in the service of the Lord and gave him assurance.
Okay. Achha. That means, Krishnadas ko Mahaprabhu ki seva mein laga diya. Ye laga diya nahi, seva mein hi rakkar Bengal mein bhej diya. Aur Bengal bhejne ke liye aashwasan diya. आर दिने प्रभु स्थाने कोइल निवेदन, आज्ञा देह गौर देशे पाठाई एक जन। अगले दिन भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपा करके एक व्यक्ति को बंगाल जाने के अनुमति प्रदान करें। तुमार दक्षिण गमन सुनी सचियाई, अद्वैतादि भक्त सब आछे दुख पाई। माता सची तथा अद्वैत आदि भक्तगण दक्षिण भारत भ्रमण से आपकी वापसी का समाचार ना पाकर अत्यंत दुखी है। एक जन जाई करुक शुभ समाचार, प्रभु कहे सेई करो जे इच्छा तुमार। एक व्यक्ति बंगाल जाकर उन्हें जगन्नाथ पुरी में आपकी वापसी का शुभ समाचार दे आए। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोग जो चाहे तय करें। तबे से ही कृष्णदासे गौर पाठाइल, वैष्णव सबके दीते महाप्रसाद दिल। इस तरह काला कृष्णदास बंगाल भेज दिया गया और वहां बांटे जाने के लिए उसी जगन्नाथ जी का प्रसाद पर्याप्त प्रसाद दे दिया गया। তবে গৌড় দেশে আইলা কালা কৃষ্ণ দাস, নবদ্বীপে গেল তেহ সচিয়ে আই পাশ। তব কালা কৃষ্ণ দাস বঙ্গাল গয়া, যাহা সর্বপ্রথম ও মাতা শচী কো দেখনে নবদ্বীপ পৌঁছা। মহাপ্রসাদ দিয়া তারে কইল নমস্কার, দক্ষিণ হেতু আইলা প্রভু কহে সমাচার। শচী মাতাকে পাশ পৌঁছকর কালা কৃষ্ণ দাস নে উন্হে নমস্কার কিয়া অর মহাপ্রসাদ ভেট দিয়ে ফির উসনে ইয়ে শুভ সমাচার দিয়া কি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আপনি দক্ষিণ ভারত যাত্রা সে বাপস আয়ে হ্যাঁ। শুনিয়া আনন্দিত হইল শচী মাতার মন, শ্রীবাসাদি আর যত যত ভক্তগণ। ইয়ে শুভ সমাচার সে মাতা শচী তথা শ্রীবাস ঠাকুর ইত্যাদি নবদ্বীপ কে সারে ভক্ত কো পরম আনন্দ হুয়া। শুনিয়া সবার হইল পরম উল্লাস, অদ্বৈত আচার্য গৃহে গেল কৃষ্ণ দাস। মহাপ্রভু কা পুরি মে বাপস আনা শুনকর সভি লোক হর্ষিত হুয়ে। ইসকে বাদ কৃষ্ণদাস অদ্বৈত আচার্যকে ঘর গয়া। আচার্যের প্রসাদ দিয়া করি নমস্কার, সম্যক কহিল প্রভু মহাপ্রভুর সমাচার। নমস্কার করনে কে বাদ কৃষ্ণদাস নে অদ্বৈত আচার্য কো মহাপ্রসাদ দিয়া ফির উসনে উনসে মহাপ্রভু কা সমাচার বিস্তর মে বতলায়া। শুনি গোসাইর আনন্দ হইল প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহুন, শুনিয়া আচার্য গোসাইর আনন্দ হইল প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্য গীত কইল। জব অদ্বৈত আচার্য নে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বাপস আনে কা সমাচার শুনা তো ওয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হুয়ে। উনহোনে প্রেমাবেশ মে আকর হুঙ্কার কি অর দের তক নাচতে গাতে রহে। হরিদাস ঠাকুরের হইল পরম আনন্দ, বাসুদেব দত্তগুপ্ত মুরারী সেন শিবানন্দ। ইয়ে শুভ সমাচার পাকর হরিদাস ঠাকুর ভি পরম প্রসন্ন হুয়ে। ইসি তরহ বাসুদেব দত্ত মুরারী গুপ্ত তথা শিবানন্দ সেন ভি প্রসন্ন হুয়ে। আচার্য রত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর, আচার্য নিধি আর পণ্ডিত গদাধর। ইস শুভ সমাচার সে আচার্য রত্ন বক্রেশ্বর পণ্ডিত আচার্য নিধি তথা গদাধর পণ্ডিত অত্যন্ত প্রসন্ন হুয়ে। শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর, শ্রীমান পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর। শ্রীরাম পণ্ডিত দামোদর পণ্ডিত শ্রীমান পণ্ডিত বিজয় তথা শ্রীধর ভি ইস সমাচার সে পরম প্রসন্ন থে। রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য নন্দন, কতে কহিব আর যত প্রভুর গণ। রাঘব পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য কা পুত্র তথা সমস্ত ভক্তগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হুয়ে। শুনিয়া সবার হইল পরম উল্লাস, সবে মিলি গেলা চত্রী অদ্বৈতের উপাস। ইয়ে সভি অত্যন্ত প্রসন্ন থে অর সভি মিলকর অদ্বৈত আচার্যকে ঘর আয়ে। আচার্যের সবে কইল চরণ বন্দন, আচার্য গোসাই সবারে কইল আলিঙ্গন। সারে ভক্তনে অদ্বৈত আচার্যকে চরণো পর নমস্কার অর্পিত কিয়া অর অদ্বৈত আচার্য নে উন সবু কা আলিঙ্গন কিয়া। দিন দুই তিন আচার্য মহোৎসব কইল, নীলাচল যাইতে আচার্য যুক্তি দৃঢ় কইল। তব অদ্বৈত আচার্য নে এক উৎসব মনায়া যো দু তিন দিন তক চলা। তৎপশ্চাৎ উন সবনে জগন্নাথপুরী জানে কা সংকল্প কিয়া। সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া, নীলাদ্রি চলিল শচী মাতার আজ্ঞা লইয়া। সারে ভক্ত নবদ্বীপ মে একত্র হুয়ে ওর শচী মাতা কে আজ্ঞা লেকর নীলাদ্রি অর্থাৎ জগন্নাথপুরী কে লিয়ে রওনা হো গয়ে। প্রভুর সমাচার শুনে কুলীন গ্রামবাসী, সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা সবে আসি। সত্যরাজ রামানন্দ তথা অন্য ভক্ত কো ভক্ত যো কুলীন গ্রাম কে বাসী থে আকার অদ্বৈত আচার্য কে সাথ লে হো লিয়ে। মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হইতে, আচার্যের ঠাই আইলা নীলাচল হইতে। মুকুন্দ নরহরি তথা রঘুনন্দন খণ্ড নামক স্থান সে অদ্বৈত আচার্য কে ঘর আয়ে। जिससे वे उनके साथ जगन्नाथ पुरी जा सके। সেকালে দক্ষিণ হইতে পরমানন্দপুরী গঙ্গা তীরে আইলা নদিয়া নগরী। উসি সময় পরমানন্দপুরী ভি দক্ষিণ ভারত সে আগে ওয়ে গঙ্গা নদীকে কিনারে কিনারে যাত্রা করতে হুয়ে অন্তত নদিয়া নগরী পৌঁছে। আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম, আই তারে ভিক্ষা দিলা করিয়া সম্মান। নবদ্বীপ মে পরমানন্দ পুরী নে সচি মাতা কে ঘর মে হি আপনা রহনে ওর ভোজন করনে কা আড্ডা বনায়া। ওয়ে উন্হে হর বস্তু বড়ে হি আদর কে সাথ দেতি থি। প্রভুর আগমন হইতে তাহাই শুনিল, শীঘ্র নীলাচল যাইতে তার ইচ্ছা হইল। জব পরমানন্দ পুরী সচি মাতাকে ঘর পর রহ রহে থে তভি উনহোনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে জগন্নাথ পুরী লোটনে কি খবর শুনি। অতএব উনহোনে জল্দ সে জল্দ উহা জানে কা নিশ্চয় কর কিয়া। প্রভুর এক ভক্ত দিজ কমলাকান্ত নাম, তারে লইয়া নীলাচলে করিলা প্রয়াণ। উহা পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কা এক ভক্ত থা জিসকা নাম দ্বিজ কমলাকর থা, জিসে পরমানন্দ পুরী আপনে সাথ জগন্নাথ পুরী লেতে গে। সত্তরে আসিয়া তেহ মিলিলা প্রভুরে, প্রভুর আনন্দ হইল পাইয়া তাহারে। পরমানন্দ পুরী শীঘ্রই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে স্থান আ পৌঁছে। মহাপ্রভু উনহে দেখকর অত্যন্ত প্রসন্ন থে। প্রেমাবেশে কইল তার চরণ বন্দন, দেহ প্রেমাবেশে কইল প্রভুরে আলিঙ্গন। মহাপ্রভু নে অত্যন্ত প্রেমাবেশ মে পরমানন্দ পুরীকে চরণ কমলো কি পূজা কি, ওর পরমানন্দ পুরী নে ভি মহাপ্রভু কা প্রেমাবেশ মে আলিঙ্গন কিয়া। প্রভু কহে তোমার সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়, মোরে কৃপা করি করো নীলাদ্রি আশ্রয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে কহা কৃপায়া মেরে সাথ রুকে, ওর জগন্নাথ পুরীকে শরণ গ্রহণ করকে মেরে উপর কৃপা করে। পুরী কহে তোমার সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি, গৌড় হইতে চলিয়াইলাম নীলাচল পুরী। পরমানন্দ পুরী নে কহা মৈ ভি আপকে সাথ রহনা চাহতা হুঁ, ইসলিয়ে মৈ গৌড় দেশ বঙ্গাল সে জগন্নাথ পুরী আয়া হুঁ। দক্ষিণ হইতে শুনি তোমার আগমন, শচি আনন্দিত আর যত ভক্তগণ। নবদ্বীপে মাতা শচি তথা অন্য সারে ভক্ত দক্ষিণ ভারতকে আপকি বাপসি শুনকর অত্যন্ত আনন্দিত হ্যাঁ। সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে, তা সবার বিলম্ব দেখি আইলাম তরিতে। ওয়ে সব আপকে দেখনে ইহা আ রহে হ্যাঁ, কিন্তু জব মানে দেখা কি ওয়ে বিলম্ব লগা রহে হ্যাঁ তো মৈ তুরন্ত অকেলে হি চলা আয়া। হম ইহা তক হি আজ পাঠ রাখতে হ্যাঁ। কোই প্রশ্ন হ্যাঁ কিসি কো? हाँ, क्योंकि भगवान का प्रेम कौन बांट सकता है? भक्त ही भगवान का प्रेम बांट सकते हैं, भगवान नहीं बांटते हैं। भगवान क्या जाकर बोलेंगे हमको प्यार करो? कोई जाके बोलता है हमको प्यार करो? हाँ, बल्कि भगवान का भक्त जाकर बोलते हैं भगवान को प्यार करो। भगवान ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं कि मेरा शरण लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बल्कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कृष्ण को प्यार करो। इसलिए भगवान भक्त के रूप में आए, शिक्षा देने के लिए आए कैसे भक्त बनना चाहिए। भक्त हो बने बिना तो हम भगवान को प्यार नहीं कर सकते, इसलिए भगवान भक्त के रूप में आकर सिखा रहे हैं कैसे हम भगवान को, हमें भगवान को प्यार करना चाहिए। काला कृष्ण हाँ क्या हुआ हाँ, माया इतना ही प्रबल है कि भगवान को, भगवान के साथ रहते हुए भी हम भगवान को नहीं स्वीकार करते हैं, भगवान को देखते हुए भी भगवान को पहचानते नहीं। दुर्योधन भगवान को देखा, देख रहा था भगवान को, साथ था ना भगवान का, बल्कि उसका आचरण कैसा था। ओके, हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे हरि।